एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को छुआ है, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड।
हाँ बिल्कुल, डिकेंस मतलब विक्टोरियन इंग्लैंड की वो आवाज जिसने सिर्फ कहानियां नहीं बुनी, समाज का आईना भी दिखाया।
सही कहा, और उनके अपने अनुभव जैसे गरीबी, बाल श्रम, वो सब उनकी लेखनी में साफ झलकता है। एक गहरी संवेदना, एक सामाजिक कटाक्ष।
जी, ऑलिवर ट्विस्ट हो या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उनके किरदार तो जैसे अमर हो गए हैं।
और डेविड कॉपरफील्ड, जिसे 1849-50 में लिखा गया, उसे तो डिकेंस खुद अपना प्रिय बच्चा कहते थे। शायद इसलिए क्योंकि इसमें उनके जीवन की झलक सबसे ज्यादा है।
हाँ, इसे बिल्डिंग्स रोमान कहते हैं ना, मतलब एक किरदार के बनने की कहानी, बचपन से बड़े होने तक का सफर।
बिल्कुल, एक नायक का सफर, उसके संघर्ष, उसका प्यार, उसकी पहचान की तलाश। तो चलिए डेविड के इस सफर को करीब से देखते हैं, समझते हैं।
कहानी शुरू होती है डेविड के जन्म से, जो उसके पिता की मौत के 6 महीने बाद होता है। ब्लंडरस्टोन में उसका बचपन माँ क्लारा और उनकी वफादार नौकरानी पेगोटी के साथ, मतलब शुरुआती दिन तो काफी अच्छे थे।
हाँ, वो मासूमियत वाले दिन, धूप जैसे।
बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है सौतेले पिता मिस्टर मर्डस्टोन और उनकी बहन जेन का आना।
अच्छा, उनके आने से क्या बदलता है?
सब कुछ। वो लोग दृढ़ता के नाम पर एक तरह की क्रूरता लाते हैं। घर का माहौल एकदम बदल जाता है, ठंडा, सख्त। डेविड और उसकी माँ क्लारा के लिए तो ये एक अंधेरे दौर की शुरुआत थी।
और फिर वो घटना होती है जब डेविड मर्डस्टोन को काट लेता है।
हाँ, वो पिटाई के दौरान डर और गुस्से में, बस वो एक घटना जैसे उसके बचपन के अंत का ऐलान कर देती है।
और सजा मिलती है सालिम हाउस भेजे जाने की, एक बोर्डिंग स्कूल।
नाम का बोर्डिंग स्कूल, असल में वो एक तरह की सजा काटने की जगह थी। हेडमास्टर मिस्टर क्रीकल का खौफ बहुत क्रूर।
लेकिन शायद हर अंधेरे में कोई रोशनी होती है, दोस्त बने वहां।
हाँ, दो खास दोस्त मिले, एक जेम्स टियरफोर्थ, अमीर, होशियार, आकर्षक, थोड़ा बिगड़ा हुआ भी, और दूसरा टॉमी ट्रेडल्स, सीधा साधा, नेक दिल। पर ये साथ भी ज्यादा दिन नहीं रहा। माँ की मौत की खबर आती है और 10 साल के डेविड को स्कूल से निकालकर लंदन की एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया जाता है, वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री।
10 साल की उम्र और फैक्ट्री का काम, ये तो डिकेंस के अपने जीवन का दर्दनाक हिस्सा है।
बिल्कुल, अकेलापन, भूख, अपमान, ये सब उसने झेला, लेकिन यहीं उसे मैकॉबा परिवार मिलता है।
ओह, विल्किंस मैकॉबा, क्या कमाल का किरदार है।
हाँ, गरीबी और कर्ज में डूबे होने के बावजूद जिंदगी से भरपूर, हमेशा कोई ना कोई ड्रामा और गजब का आशावाद। मिस्टर मैकॉबर हमेशा कहते थे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
उनका वो सिद्धांत भी तो मशहूर है, आमदनी 20 पाउंड, खर्चा 19 पाउंड 6 पेंस तो खुशी।
और खर्चा 20 पाउंड 1 पेंस
तो दुख।
बिल्कुल, ये उस दौर की आर्थिक असुरक्षा पर कटाक्ष भी है। डेविड को उनसे बहुत स्नेह मिला।
लेकिन ये साथ भी छूट जाता है।
हाँ, मैकॉबर परिवार कर्जदारों से बचने के लिए लंदन छोड़ देता है। डेविड फिर अकेला। अब वो एक बड़ा फैसला लेता है।
क्या?
लंदन से भागने का, पैदल डोवर जाने का, अपनी इकलौती रिश्तेदार ग्रेट आंट बेट्सी ट्रॉटवुड को ढूंढने।
क्या बात है, तो बहुत हिम्मत का काम था उस उम्र में।
हाँ, बहुत मुश्किल सफर था, पर वो पहुंच जाता है।
और बेट्सी ट्रॉटवुड से मुलाकात, वो तो डिकेंस के सबसे यादगार किरदारों में से हैं। कैसी थी वो?
थोड़ी अजीब, सख्त मिजाज, अपने बगीचे में गधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती।
सुना है।
हाँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। शुरू में थोड़ी हिचकिचाती हैं डेविड को रखने में, क्योंकि उन्हें लड़की की उम्मीद थी, पर जब मर्डस्टोन उसे लेने आते हैं तो बेट्सी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर भगा देती हैं।
वाह।
हम देती हैं ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड जैसे एक नई शुरुआत। उनके साथ उनके एक सीधे साधे दोस्त मिस्टर डिक भी रहते हैं।
तो बेट्सी एक तरह से डेविड की जिंदगी में एक नया मोड़ लाती हैं, उसे सुरक्षा देती हैं, शिक्षा का मौका देती हैं।
बिल्कुल, बेट्सी उसे कैंटरबरी के एक अच्छे स्कूल में भेजती हैं, और रहने का इंतजाम होता है वकील मिस्टर विकफील्ड के घर।
अच्छा, विकफील्ड के घर, यहाँ कौन मिलता है उसे?
यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं, एक तो मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नेस विकफील्ड, शांत, समझदार, नेक। वो धीरे धीरे डेविड की सबसे करीबी दोस्त और एक तरह से उसकी अंतरात्मा की आवाज बन जाती है।
एग्नेस उपन्यास की नैतिक धुरी मानी जाती है ना?
बिल्कुल। और दूसरा है यूरिया हीप, मिस्टर विकफील्ड का क्लर्क।
ओ यूरिया हीप, उसकी वो झूठी विनम्रता।
हाँ, वो हमेशा हाथ मलता रहता है, बहुत विनम्र रोने का दिखावा करता है, पर अंदर ही अंदर बहुत कपटी और महत्वाकांक्षी है। उसकी नजर विकफील्ड की जायदाद और एग्नेस पर है। यहीं से कहानी में विलन की एंट्री होती है।
तो अब डेविड की पढ़ाई पूरी होती है, वो बड़ा होता है, आगे क्या?
वो प्रॉक्टर मतलब वकील बनने के लिए लंदन जाता है, स्पेंडलो और जॉकिंस फर्म में काम सीखता है।
और यहीं प्यार होता है?
हाँ, यहीं उसका दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है, डोरा स्पेंडलो, उसके बॉस की बेटी। बहुत खूबसूरत पर थोड़ी बचकानी, नासमझ,
मतलब एक तरह का मोह
कह सकते हैं। डेविड पूरी तरह उस पे फिदा हो जाता है। ये उसके अव्यवस्थित हृदय का दौर है जहां वो भावनाओं में बह जाता है।
और इसी समय उसकी मुलाकात पुराने दोस्त टियरफोर्ड से फिर होती है।
जी हाँ, और डेविड अब भी उसके आकर्षण से बहुत प्रभावित है। वो उसे अपने घर यारमाउथ ले जाता है पिगोटी परिवार से मिलवाने।
ये शायद एक गलती थी,
बहुत बड़ी गलती। स्टियरफोर्थ वहां लिटिल एमिली, जो पेगोटी की भतीजी है और हैम पेगोटी से उसकी शादी तय है, उसे बहका लेता है।
ओहो।
हाँ, वो एमिली को अपने साथ भगा ले जाता है। ये पेगोटी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है।
और डेविड के लिए, उसे कैसा महसूस होता होगा?
डेविड का स्टियरफोर्थ से मुंह भंग हो जाता है। उसे बहुत अपराध बोध होता है कि वो अनजाने में इस तबाही का कारण बना। स्टियरफोर्थ यहाँ दिखाता है कि कैसे ऊंचा सामाजिक वर्ग और आकर्षण भी नैतिक पतन को छिपा सकता है।
सही। और दूसरी तरफ डोरा है, उससे शादी हो जाती है डेविड की?
हाँ, शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी आसान नहीं होती। डोरा घर संभालने में बिल्कुल नाकाबिल है। प्यारी है पर एक चाइल्ड वाइफ जैसी।
मतलब प्यार तो है पर वो साथी वाली बात नहीं है।
हाँ, डेविड को एक बौद्धिक और भावनात्मक साथी की कमी महसूस होती है, लेकिन इसी दौर में वो लिखना शुरू करता है। धीरे धीरे लेखन ही उसका सहारा और पहचान बनता है।
तो एक तरफ घर की उलझन है, दूसरी तरफ लेखन में करियर, और उधर यूरिया हीप का जाल भी तो कसरा होगा।
बिल्कुल। हीप धीरे धीरे मिस्टर विकफील्ड को, जो अब शराब के आदि हो चुके हैं, पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। उनकी फर्म हड़प लेता है और एग्नेस पर शादी का दबाव डालता है।
और इसी बीच बेट्सी ट्रोटफुट की संपत्ति का क्या होता है?
वो भी डूब जाती है। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें डेविड पर आती हैं।
ये मुश्किलें डेविड को बदलती हैं जरूर, उसे मजबूत बनाती हैं।
हाँ, बहुत। ये आर्थिक तंगी, ये नैतिक जिम्मेदारियां उसे ज्यादा परिपक्व बनाती हैं। लेखन उसे एक मकसद देता है और एग्नेस की शांत शक्ति उसे हमेशा सहारा देती है। वो समझने लगता है कि असली चीज चरित्र है, पैसा नहीं।
और फिर आता है वो क्लाइमैक्स, यूरिया हीप का पर्दाफाश। वो कैसे होता है?
वो बड़ा मजेदार है। यहाँ हीरो बनकर उभरते हैं मिस्टर मिकॉबर।
मिकॉबर, वो कैसे?
वो हीप के यहाँ क्लर्क बन जाते हैं और अंदर की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर बड़े नाटकीय ढंग से सबके सामने हीप की सारी धोखाधड़ी और जालसाजी का भंडा फोड़ कर देते हैं।
वाह, क्या बात है।
हीप का पतन होता है, विकफील्ड और बेट्सी को उनकी संपत्ति वापस मिलती है। एकदम डिकिन्स स्टाइल में न्याय की जीत।
लेकिन इसी क्लाइमैक्स में एक बड़ी त्रासदी भी है, यारमाउथ का वो भयंकर तूफान।
हाँ, वो तूफान जैसे सब कुछ उलट पुलट कर देता है। तट पर एक जहाज टूट रहा होता है। हैम पेगोटी, वो नेक दिल इंसान, एक डूबते आदमी को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे देता है।
और वो डूबता हुआ आदमी कौन होता है?
स्टियरफोर्थ। विडंबना देखिए, स्टियरफोर्थ भी उस तूफान में मारा जाता है। हैम का बलिदान और स्टियरफोर्थ का अंत एक साथ।
इस तूफान के बहुत गहरे मायने हैं, बाहरी तबाही के साथ साथ किरदारों के अंदर की उथल पुथल, नैतिक संघर्ष, कर्मों का फल, सब कुछ।
बिल्कुल। और इसी उथल पुथल के बीच डेविड को एक और व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़ता है, डोरा।
डोरा की मृत्यु।
हाँ, वो लंबी बीमारी के बाद शांति से गुजर जाती है और मरते हुए एग्नेस से कहती है कि वो डेविड का ख्याल रखे। शायद वो समझ गई थी कि डेविड का सच्चा साथी कौन है।
डोरा की मौत के साथ डेविड के जीवन का एक हिस्सा खत्म होता है, उसकी अपरिपक्वता का दौर शायद।
हाँ, अब वो दुख और आत्मखोज के लिए यूरोप चला जाता है 3 साल के लिए।
और इसी अकेलेपन में उसे कुछ एहसास होता है।
बिल्कुल। उसे एग्नेस के लिए अपने सच्चे, गहरे और स्थायी प्यार का एहसास होता है। वो प्यार जो हमेशा था, पर जिसे वो शायद देख नहीं पा रहा था।
कभी कभी जो सबसे करीब होता है उसे देखने के लिए दूर जाना पड़ता है।
सही कहा, वो वापस लौटता है एक बदला हुआ इंसान, परिपक्व, शांत, संतुलित,
और एग्नेस से अपने प्यार का इजहार करता है।
हाँ, और एग्नेस जिसने हमेशा खामोशी से उससे प्यार किया था उसे अपना लेती है। उनकी शादी होती है, दो समझदार परिपक्व लोगों का मिलन, बराबरी का रिश्ता,
और फिर डेविड एक सफल लेखक बनता है।
हाँ, एक मशहूर उपन्यासकार। उसका पारिवारिक जीवन सुखी है। उपन्यास के अंत में हम उसे अपनी डेस्क पर लिखते हुए देखते हैं और एग्नेस, उसकी अच्छी फरिश्ता, उसके पास है।
क्या सफर है, बचपन की अनिश्चितता से शुरू होकर एक सफल संतुष्ट जीवन तक।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी कहानी के सार को देखें, मुख्य बातों को, तो क्या निकल कर आता है?
पहली बात तो यही कि मुश्किलें इंसान को गढ़ती हैं। डेविड को देखो, वो निखरता है। यूरिया हीप को देखो, वो बिखरता है।
सही, और सच्चा प्यार बनाम मोह, एग्नेस और डोरा का फर्क।
बिल्कुल। और ये कि इंसान का नैतिक चरित्र उसके सामाजिक वर्ग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेगोटी, मिकॉबर जैसे लोग स्टीयरफोर्थ या हीप से कहीं बेहतर इंसान है।
और डिकिन्स की सामाजिक आलोचना तो है ही, बाल श्रम, शिक्षा, कानून व्यवस्था।
हाँ, वो सब, और पहचान की तलाश, अतीत का असर, और सबसे जरूरी, एक अनुशासित हृदय का विकास, मतलब भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना।
डिकिन्स के लिखने की कला भी तो अद्भुत है। फर्स्ट पर्सन में कहानी कहना, डेविड की अपनी आवाज।
जी, वो हमें सीधे उसके मन में ले जाता है। फिर वो बिल्डिंग्स रोमान वाली संरचना उसका विकास दिखाती है, और प्रतीकवाद, समुद्र, तूफान,
और वो यादगार किरदार बेट्सी ट्रॉटवुड, मिकॉबर, यूरिया हीप, थोड़े अतिरंजित पर एकदम असली लगते हैं।
हाँ, उनमें हास्य भी है, करुणा भी, और एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी।
अंत में डेविड कॉपरफील्ड शायद हमें यही सिखाता है कि जिंदगी के ठोकरें हमें मजबूत बना सकती हैं, और असली हीरोइज्म शायद बड़े कारनामों में नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दया, ईमानदारी और रिश्तों को निभाने में है।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी हमें अपनी सी लगती है ना? मानवीय रिश्ते ही तो हैं जो हमें हर तूफान में संभालते हैं।
सही कहा।
और एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाता है ये उपन्यास, क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में डिकिन्स के उस अनुशासित हृदय की जरूरत और भी ज्यादा नहीं है?
यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सालांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।